हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसने चिट्ठी को मोड़कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और खिड़की से नीचे झांकने लगी। वो बहुत मुश्किल से खिड़की की रस्सी को पकड़कर नीचे की तरफ उतर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और हाथ फिसल भी रहे थे, लेकिन उसने मजबूती बनाए रखी। वो धीरे धीरे सरकती है और नीचे नीचे उतर जाती है। क्योंकि उसकी अम्मी का कमरा पहली मंजिल पर ही था, तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गिर न जाए। जमीन पर कदम पड़ते ही वो हवेली के पिछले हिस्से की तरफ भागने लगती है। दीवार के पास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो देखती है वहाँ पर एक छोटा सा लोहे का दरवाज़ा था और वहाँ पर लगा हुआ ताला जो उसे हमेशा से दिखाई देता था, आज वो वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ज़िब्रान सही कह रहा है, कोई है जो उनकी मदद कर रहा है। वो भागते हुए उस छोटे से लोहे के दरवाजे के पास जाती है और उसे खोल देती है। जैसे ही वो हवेली के पिछले हिस्से में जाती है, उस गाड़ी के पास उसे ज़िब्रान नजर आता है। ज़िब्रान को देखकर वो खुश हो जाती है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। और ज़िब्रान जब इनायत को देखता है तो वो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए हड़बड़ाते हुए कहता है, जल्दी करो, हम ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते हैं। इनायत डर जाती है और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। ज़िब्रान ने भी एक सेकंड बर्बाद नहीं किया और जल्दी से कार स्टार्ट कर दी। ड्राइविंग सीट पर बैठने के साथ ही इंजन की तेज आवाज के साथ गाड़ी दौड़ने लगती है। उन दोनों की सांस भी तेज चल रही थी। इनायत को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ज़िब्रान के साथ आज़ाद है और अब वो रियाज की कैद में नहीं है। उसने घबराते हुए ज़िब्रान की तरफ देखा। उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी था, शर्ट पर खून के निशान बने हुए थे, जख्मी नीले हो गई थी और कई खून के दाग भी पुराने हो गए थे। वो रोते हुए ज़िब्रान को देखते हैं और कहती है, ज़िब्रान मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अभी इन सब को सोचने का वक्त नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसने जोरों से सांस लेते हुए कहा। उसकी सांस भी उखड़ रही थी। कार को लापरवाही से सड़क पर दौड़ाते हुए वो घबराते हुए इधर उधर भी देख रहा था। जाहिर सी बात है, उन दोनों ने जो किया था उसके बाद तो उनका यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था। इनायत भी सड़क पर देख रही थी। वो घबराते हुए कहती है, ज़िब्रान अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम दोनों यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। मेरे पास हमारे नकली आईडी और नकली पासपोर्ट पहले से ही तैयार हैं। हम लोग यहाँ से सीधे पाकिस्तान जाएंगे और एक महीने बाद वहाँ से वापस आएंगे, और उसके बाद हम तुम्हारे और उस रियाज मलिक सैयद की शादी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करेंगे। बस तुम्हारा उससे तलाक हो जाए, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। इनायत तो घबरा रही थी, लेकिन उसने घबराते हुए कहा, और क्या उसके बाद तुम्हारी अम्मी अब्बू हमारी निकाह को कबूल करेंगे? क्या वो तलाकशुदा महिला को अपनाएंगे? मुझे इसकी परवाह नहीं है इनायत, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस इतना काफी है, बाकी मुझे और किसी चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम इनायत, मैं कितना डर गया था जब मुझे ये पता चला था कि मैंने तुम्हें खो दिया है, ज़िब्रान ने तेजी से ड्राइव करते हुए कहा। तो इनायत भी घबराते हुए कहती है, और मैं भी बहुत डर गई थी, मैंने भी सारी उम्मीदें खो दी थी। तुम्हें पता है, दो दिन पहले मैंने एक बुरा सपना देखा था, मुझे लगा कि रियाज ने तुम्हें मार डाला है। मैं दिन ब दिन उम्मीदें खोती जा रही थी, और रियाज, वो तो घर में नशे की हालत में आने लगा था। उसके शर्ट पर खून के दाग थे और मुझे लगा कि उसने तुम्हें मार डाला है। उस रात वो मेरे बहुत करीब था, मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत चिल्ला रही थी। इनायत ये कहते हुए रो पड़ती है। उसे रोता हुआ देख ज़िब्रान उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहता है, अब बस, अब और आंसू नहीं, तुम मेरे साथ हो और हम सुरक्षित हैं, बस हम कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वैसे मुझे नहीं पता इनायत कि हमें किसने बचाया है, जो भी है मैं सारी जिंदगी खुद से उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगा। इनायत भी रोते हुए हैरानी से उसकी बात सुनती है और वो सुबकते हुए कहती है, लेकिन वो कौन है जो हमारी इस तरीके से मदद कर रहा है? हमें भगाने में उसका क्या फायदा है? मुझे नहीं पता और मुझे परवाह भी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे इतने दिनों तक सिर्फ पीटा ही जाता था और मुझे जान से मार देने की धमकी दी जाती थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों में कोई पट्टी नहीं थी और जब मैं होश में आया तो देखा मैं सड़क के किनारे पड़ा हूँ। ये गाड़ी, GPS, फोन, डॉक्यूमेंट सब मुझे वहीं पर मिला था। इनायत ने गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर लगा हुआ GPS देखा तो वो हैरान रह जाती है। सच में इस GPS में रियाज की हवेली को पहले से ही मेंशन किया गया था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो हैरानी से कहती है, जिब्रान, GPS? जिब्रान हैरानी से कहता है, क्या? इनायत घबराते हुए कहती है, जिब्रान, मेरे पास भी एक ट्रैकर है, मुझे भी ट्रैक किया जा सकता है। जिब्रान एक झटके से गाड़ी रोक देता है और हैरानी से इनायत को देखते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे पास ट्रैकर, लेकिन कैसे और कहाँ है वो? इनायत धीरे से अपना लहंगा उठाती है और अपने पैरों में बंधे हुए पायल के साथ एक और पतली सी चैन जैसी चीज को दिखाती है, जिस पर एक चुंबक जैसा कुछ लगा हुआ था। जिब्रान हैरानी से इनायत को देखता है तो इनायत घबरा जाती है और कहती है, ये जो चैन तुम मेरे पैरों में देख रहे हो ना, इसी में GPS है। दरअसल कुछ समय पहले मैं अमल और जन्नत के साथ बिना बताए एक रेस्टोरेंट में चली गई थी और उस वक्त हमारे साथ कोई गार्ड या सिक्योरिटी भी नहीं थे। उस वक्त रियाज बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने सबके पैरों में ऐसा GPS ट्रैकर लगा दिया था ताकि हमें कुछ हो तो पता चल सके हम कहाँ पर हैं। कुछ दिनों तक तो मुझे पता ही नहीं था कि ये GPS है। फिर एक दिन मैंने अमल को इस बारे में बात करते हुए सुना था कि ऐसा GPS घर में हर शख्स के पैरों पर बंधा हुआ है। इनायत जिब्रान को ये बता ही रही थी कि तभी एक तेज रोशनी उनके सामने चमकती है और जैसे ही वो रोशनी बंद होती है उनकी कार की खिड़की पर दस्तक होती है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जिब्रान घबराते हुए गाड़ी का शीशा नीचे करता है तो वो शख्स अंदर की तरफ झांकते हुए कहता है, आपका नाम इनायत है?